पिछली बार हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह राजा बन करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद हमने क्रम से मरकुस 14 और 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के उस सफरिंग पर विचार किया था, क्लेश और कष्ट पर विचार किया था कि जो लोगों ने उसको पकड़ करके किस प्रकार से उस पर दोषारोप लगाया। और उसके साथ साथ हमने इस बात को देखा था बृहस्पति पार के दिन रात 1 बजे प्रभु यीशु मसीह लगभग उसको अरेस्ट किया गया, और 1 बजे से लेकर 9 बजे तक उसको 6 मुकदमों का या ट्रायल्स का सामना करना पड़ा। हम इन बातों पर विचार कर रहे थे और हमने देखा था, और ये सच है, केवल ईस्टर के समय में या गुड फ्राइडे के समय में हम कुछ बातों को याद कर लें, बड़े दिन के समय में हम कुछ बातों को यीशु के जन्म से याद कर लें, तो अगर ये ऐसे ही है, इतना ही है, तो फिर और उसके बाद हम भूल जाएं, तो इसका मतलब हमारे जीवन में प्रभु का कार्य नहीं है। ये केवल सीजनल नहीं है। कुछ लोग चर्च में साल में 3 बार जाते हैं, 2 अलग अलग। एक तो मैं अक्सर बोलता हूँ हैचिंग मैचिंग डिस्पैचिंग, जब बच्चे पैदा होते हैं उनको ला करके हैच कर दिया, मतलब बचपन में बपतिस्मा दे दिया, छिड़काव दे दिया, जब बड़े हो गए तो उनको मैच कर दिया, शादी करा दी, उसके बाद जब मर गए तो उनको डिस्पैच कर दिया। लेकिन मसीह जीवन ऐसा नहीं है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक है, इसके अलावा हट करके ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस पे चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं मसीह जीवन। प्रति इतवार ये आराधना का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और एक विश्वासी का जीवन अगर सच मुझे क्रूस के अर्थ को उसको समझना है, तो वो क्रूस का अर्थ उसके जीवन में, उसके कार्य में, उसके व्यवहार में दिखाई देना है। और इसलिए चाहे हम कहीं भी रहें, कैसे रहें, हमारे परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता, उसके साथ साथ आराधना करना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, ये एक बहुत ही अर्थपूर्ण मायने रखता है। इसीलिए प्रेरित काम उसके 2 अध्याय में लिखा है, और जब वो विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और कलीसिया में वो शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। और इसीलिए बार बार आप लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि अच्छा है समय निकाल के बाइबल अध्ययन में आए, प्रार्थना में आए, और हर इतवार को परमेश्वर के भवन में संगति में आए। ये विश्वासियों की पहचान है कि हम और अधिक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जब तक कोई ऐसा कार्य हमारे सामने ना हो। तो जब हम गुड फ्राइडे के बारे में बात करते हैं, तो गुड फ्राइडे के बारे में अधिकतर हम उन 7 वाणियों को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। मैं उन 7 वाणियों को आपके सामने क्रम से रखना चाहूँगा ताकि हमारे लिए वो पुनर्वर्ती हो जाए। तो यहाँ पर प्रथम वाणी है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये लूका उसका 23 अध्याय उसके 34 पद में है। दूसरी वाणी है लूका 23 अध्याय उसका 43 पद, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरी वाणी, हे नारी देख तेरा पुत्र यह है, देख तेरी माता यह है। यौना उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद। चौथी वाणी मरकुस उसका 15 अध्याय 34 पद, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी है यौना 19 अध्याय के 28 पद में है, मैं प्यासा हूँ। तब छठी वाणी है यौना उसका 19 अध्याय 30 पद, पूरा हुआ। और फिर सातवीं वाणी है लूका उसका 23 अध्याय 46 पद, हे पिता अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किसी भी सुसमाचार के लेखक ने इन 7 वाणी को एक साथ नहीं लिखा है। किसी ने 2 वाणियों का जिक्र करा है, किसी ने 3 वाणियों का जिक्र करा है, किसी ने 1 वाणी का जिक्र करा है, किसी ने दोहराया है। यौना है, यौना ने 3 वाणियों का जिक्र करा है। लेकिन हम चारों सुसमाचार को हम पढ़ते हैं और उन क्रम में आते हैं, तब हम देखते हैं किस प्रकार से ये 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने, ये 7 वाणी जैसे पिछली बार भी बता रहा था कि 9 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक वो क्रूस पर है, 3 बजे तक क्रूस पर है। 12 बजे तक उसने पहली 6 वाणी को बोला है, और तब उसके बाद 12 से लेकर के 3 बजे तक पूरा अंधेरा छाया रहा, और तब अंतिम वाणी थी जो उसने 3 बजे लगभग उसके मुंह से निकली है, हे मैं पिता अपनी आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये है, अगर इन वाणी पर विचार करें, पहली वाणी और आखिरी वाणी का संबोधन पिता के रूप में है। पहली वाणी, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। आखिरी वाणी, हे पिता अपनी आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लेकिन बीच में जितनी वाणियाँ हैं, बीच में जितनी वाणियाँ हैं, प्रभु परमेश्वर केवल एक बार वो परमेश्वर का नाम लेता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। बाकी वो अपनी आस्थाओं को और दूसरे की आस्थाओं को सामने रखते हुए वो उन वाणियों को करता है। लेकिन जब हम इस पर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को, जो मरकुस 15 16 से 20 है, वो मत्ती में है, लूका में है, यूहन्ना में, तीनों चारों सुसमाचार इसको वर्णन करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए 15 अध्याय 16 पद से लेकर के 20 पद तक। सैनिक उसे किले के भीतर अर्थात प्रेटोरियम में ले गए। प्रेटोरियम बोलते हैं जो वहाँ पर उन लोगों का जो सभा होती थी, और सभा का जो कमरा होता था, है ना, जिसको जैसे मीटिंग हॉल जिसको बोलते थे, उस स्थान पर उस, और वहाँ उन्होंने समस्त रोमी सेना को बुलाकर एकत्रित किया। उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। तब वे उसे अभिवादन करने लगे, हे यहूदियों के राजा, तेरी जय हो। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते रहे और घुटने टेक कर उसे प्रणाम कर रहे थे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो बैंगनी वस्त्र उतार कर उन्होंने उसी के कपड़े उसे पहना दिए और वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। पहले कुछ समय तक उन्होंने उसको ठट्ठों में उड़ाया, उस पर बैंगनी वस्त्र उसको पहनाया, और बैंगनी वस्त्र इस बात का प्रतीक था, एक राजा वस्त्र का, राजाभिषेक के समय में, और ये लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे। ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले जब हम पाम संडे में थे, तो ये लोग यीशु मसीह को यरूशलेम में राजा करके स्वीकार कर रहे थे, और मैं उसी समय में वो बोल रहा था कि ये उनका राजाभिषेक एक सच्चा राजाभिषेक नहीं था, ये दिखावटी था, छलावे का था और अपने स्वार्थ का था। ये कुछ और सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि अगर यीशु मसीह राजा बन जाएगा तो हमें रोमी शासन से छुड़ा देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बार बार ही कहा कि मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है, और इसीलिए उन्होंने उसके 6 अध्याय उसके 15 पद में जब लोग उसको राजा बनाना चाहते थे तो वो वहाँ से चला गया था। पर वो जानता था सच है, यीशु राजा है और वो राज अपने राज सिंहासन को स्थापित करने के लिए आ रहा था, और लेकिन उसका राज सिंहासन का स्थापन करना बिल्कुल अलग था। वो इस रीति से कि वो खुद लड़े या अपनी सेना को तैयार करके लड़े और किसी राज को परास्त करे, रोमी शासन को परास्त करे और तब राजा बने, ऐसा नहीं। वो अपने राज सिंहासन को एक त्याग, एक बलिदान, एक कष्ट को सह करके उसके द्वारा वो राज सिंहासन को स्थापित करना चाहता था, और वो उसका राज कलीसिया है, जिसके आगे पुनरुत्थान के दिन में हम उस पर विचार करेंगे। नए राज को स्थापित किया अपने उस बलिदान के द्वारा। मेरे प्रियो, जब हम बात को देखते हैं तो सच है, क्रूस पर वो है, क्रूस पर वो वेदना में है, लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लोग उसका अपमान कर रहे हैं, लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं। उसने कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है, उसने किसी का बुरा नहीं किया है, सब कुछ ऐसी स्थिति में, तब भी वो क्या कहता है, वो कहता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐसे समय में वो लोगों के लिए क्षमा की याचना कर रहा है, क्षमा की प्रार्थना कर रहा है, ये सच है। वो क्यों इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो जानता है कि लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इनका ये अज्ञानता में कर रहे हैं, अज्ञानता में, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के भेद को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीड़ा सहने के भेद को नहीं जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने तो स्वयं अपने आप को उस पीड़ा सहने के लिए दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को उस बलिदान के लिए दिया था, प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को उसके हाथों में दिया था, और ये परमेश्वर पिता की योजना थी। आरंभ में व्यवस्था में ये लिखा हुआ था, व्यवस्था विवरण में ये निर्देश या ये आज्ञा दी गई थी कि किसी भी प्रकार से कोई अनजान में कोई भी ऐसा कार्य करता हो तो उसके पाप क्षमा किए जाएं, उसके अपराध क्षमा किए जाएं, ये व्यवस्था विवरण में पहले दिया गया था। और इसीलिए इस बात को जानते हुए वो इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और मेरे प्रियो, ये सच है, ये क्षमा की याचना न केवल क्रूस पर थी, आज भी वो मेरे और आपके लिए पिता से याचना कर रहा है, वो मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे एक मध्यस्थ बनकर खड़ा हुआ है ताकि कुछ समय बाद मेरा और आपका मेल परमेश्वर के साथ करा दे। और जब हम इस बात को देखते हैं, अगर हम पुराने वचन में जाएंगे, गिनती की पुस्तक उसका 15:27-29 तक ये लिखा हुआ है कि अगर कोई अनजाने में कोई अपराध करता है तो उसके अपराध क्षमा किए जाएं। और प्रभु जानता था कि लोग अनजाने में या नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसने कहा अपने में। और तब उसके बाद हम इस बात को भी देखते हैं, यशायाह भी इस बात को वर्णन करता है कि किस तरह से वो भविष्यवाणी जो यशायाह 53:12 में है उस पर पूरी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर 9 से लेकर के इस घंटे के अंदर अंदर करीब 29 भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी की गई। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्षमा की शिक्षा है जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दे रहे हैं। क्षमा का आदर्श है जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सामने रख रहे हैं। क्षमा की उद्घोषणा है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस बात को कह रहे हैं, उस क्षमा का, लेकिन न केवलता लेकिन क्षमा की निश्चयता है। सो प्रभु ने, हमारा प्रभु जो ऐसा प्रभु है, दयालु प्रभु है, उसने किसी भी रीति से, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पत्रस आगे चल के कहता है, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसने किसी का भी बुरा नहीं चाहा। मेरे प्रिय, सच्ची बात है। और ये इस बात का है कि प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा इस बात को दर्शाया है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, उसका जो आदर्श है, उसका जो उदाहरण है, इस संसार में और किसी का कोई उदाहरण और आदर्श नहीं है। और इसीलिए हम उस प्रभु के पास जाकर के अपनी विनतियों को रख सकते हैं और उससे क्षमा याचना कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, यद्यपि हमने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा पाई है, उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, लेकिन क्या आप बात को सोचते हैं, आप जानते हैं कि कितनी बार हमारे जीवन में अभी भी ऐसे पाप होते हैं जिनको हम नहीं जानते। हम नहीं जानते किसी भाई को हम अपने जीवन के द्वारा दुखी करते हैं, किसी शर्मिंदा करते हैं, किसी का शायद अपमान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनादर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शायद अभी भी हमारे जीवन से, लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को सदैव प्राप्त करते हैं। और ये उसका एक आदर्श है, ये उसका प्रेम है। सो पहली था कि उसको जो कह रहा है, हे पिता तू ने क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। लूका उसका 23:43। पहला संबोधन पिता के द्वारा है, ध्यान दीजिएगा, उसका संबंध अभी पिता के साथ उसी तरह से बना हुआ है, वो पिता से विनती कर रहा है, पिता और पुत्र का संबंध था। यह सच है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसका जाना उसकी स्वयं इच्छा के अनुसार था, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार था और लोगों के द्वारा था। तीनों बातें लोगों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने होने दिया कि लोग इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर सके ताकि परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो, और न केवल परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो लेकिन पुत्र को इस तरह से तैयार किया ताकि पुत्र पिता की इच्छा को और उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर और तैयार है। इसीलिए उसने गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना करता, उसने कहा, पिता यदि तेरी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे हटा दे, परंतु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। इसीलिए फिलिपियों में पौलुस कहता है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को शून्य कर दिया, और यहाँ तक कि शून्य करा, आज्ञा क्या रहा कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली, उसने पूरे मन से, पूरी इच्छा से, पूरी शक्ति से, पूरी भावना से अपने जीवन को, जब उस पृथ्वी पर था, स्वयं प्रभु है, स्वयं परमेश्वर है, फिर भी चूंकि कुछ समय के लिए मनुष्य है, उसने पूरी रीति से अपने आप को अपने पिता के हाथों में समर्पित किया था। और मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके सामने एक उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा राजा है, जो हमारा सब कुछ है, उसने मेरे और आपके सामने एक समर्पण का, एक अधीनता का, एक आज्ञाकारिता का आदर्श रखा है, तो मेरे और आपके अंदर कितना अधिक होने की लालसा होनी चाहिए। मुझे और आपको भी न केवल परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए लेकिन ये प्रतिशील होना चाहिए कि हम अपने जीवन को उसी जैसे परमेश्वर के साथ समर्पित कर सकें। लूका उसका 23 और उसके 43 में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मुझे स्मरण कर। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पहली वाणी वो पिता से इस तरह से कर रहा है, लेकिन यहां पर एक दूसरी वाणी है जिसका प्रभु प्रतिउत्तर दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए थे तो उनके साथ दो और जनों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी मैंने स्पष्ट बताया था कि यह नियम था, यह तरीका था, दो बातें थी। एक तरीका था कि रोमी शासक ऐसे समय में किसी एक कैदी को बरी करते थे या आजाद करते थे, स्वतंत्र करते थे। तो आजाद करने के लिए उन्होंने बरब्बा को आजाद किया। उसके बारे में पिछली बार कुछ देख चुके हैं। बरब्बा, जिसके नाम का अर्थ है अपने पिता का पुत्र, अपने पिता का पुत्र, मतलब यह है कि बरब्बा ठीक अपने पिता के समान शैतान था। क्योंकि उसका पिता के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल के विद्वान बताते हैं कि वो इसी रीति से और उससे सारी चीजों को पाया था, और उसके लिए वो डाकू कहा गया है, चोर कहा गया है, लुटेरा कहा गया है, हत्यारा कहा गया है। बरब्बा के बारे में जहां जहां पढ़ेंगे हमेशा ये नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हम यहूदा के साथ नामों को जुड़े थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया और बरब्बा को आजाद कर दिया। अब इसके साथ साथ दो और जन कैदी थे। ये कैदी वो थे जिन्होंने संभवतः वहां के जो नियम थे उनका उल्लंघन किया था, संभवतः जो वहां की सरकार थी उनके कानूनों को तोड़ा था, संभवतः उनका ईष्ट निंदा की थी, मतलब अर्थात अगर वे उनके देवी देवता को नहीं मानते थे तो उसके बाद वो ईष्ट निंदा में कहलाए जाते थे। और कुछ ऐसा था जिनको, इन दोनों को, डाकू को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब थोड़ी देर के लिए इस पर चित्रण करिए इन डाकू के बारे में, किस प्रकार से ये डाकू, एक है जो परमेश्वर प्रभु के साथ में रह रहा है और बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है? 39 पद से देखेंगे। जो वहां लटकाए गए थे उनमें से एक अपराधी ये कहकर उसकी निंदा कर रहा है, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? मेरे प्रियो, एक कैदी है जो यीशु के को नहीं पहचान पा रहा, ना यीशु को पहचान रहा है, ना यीशु को जान रहा है, ना यीशु पर विश्वास कर रहा है, और किसी भी रीति से ना यीशु को स्वीकार करने तैयार है, लेकिन उसकी निंदा कर रहा है, उससे कर रहा है। परंतु दूसरा कह रहा है, दूसरा है वो कह रहा है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है, और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ है। अब डाकू ही कह रहा है, हमारे साथ तो न्याय हुआ है, लेकिन क्योंकि हम तो अपनी करने का उचित फल भोग रहे हैं। अब ये डाकू उस दूसरे डाकू समझा रहा है, जो डाकू बोल रहा है कि अरे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तू भी बच जा, हमें भी बचा ले, क्रूस से नीचे उतर जा, क्योंकि वो नहीं जा रहा था। लेकिन इस डाकू ने, जो दूसरा डाकू था, उसने संभवतः यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, यीशु मसीह को देखा होगा, लोगों ने कुछ उसके बारे में शिक्षा दी होगी, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसने तो कोई अपराध नहीं किया, यीशु मसीह ने तो कोई अपराध नहीं किया, तूने अपराध किया है, मैंने अपराध किया है, यीशु मसीह ने अपराध नहीं किया, यीशु मसीह निर्दोष है। दो डाकू हैं, एक दाएं है एक बाएं है, और दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, दोनों के सोच अलग अलग हैं, दोनों की बातचीत अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों की भावना अलग है, दोनों की इच्छाएं अलग हैं। और इस तरह से आज भी हम समाज में इसी प्रकार के लोगों को देखते हैं। वो कह रहा है तो परंतु इस मनुष्य ने तो कोई भी अपराध नहीं किया। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? और प्रभु यीशु मसीह इन दोनों की बातचीत को सुन रहे हैं, एक डाकू जो प्रश्न कर रहा है, दूसरा जो उसको उत्तर दे रहा है, उसको समझा रहा है। यीशु मसीह इन दोनों की बातचीत सुन रहे हैं, और बातचीत सुनने के बाद तब इस डाकू से, जिसने इस बात को कहा था, भैया यीशु ने तो कोई गलत काम नहीं किया, वो तो जब पृथ्वी पर था उसने तो अच्छा काम किया, लेकिन तो बेगुनाह होकर के वो यहां सजा पा रहा है। और तब यीशु ने कहा, हे यीशु, उसने यीशु से कहा, यीशु जब तू अपने राज में आए तो मुझे स्मरण करना। इस डाकू की ये प्रार्थना है, एक डाकू की प्रार्थना है, तू उतारा और मुझे भी बचा ले, अपने आप को बचा ले। दूसरा कह रहा है जब तू अपने राज में आए, वो जानता है कि इसका ये क्रूस पर बलिदान होना उस राज को स्थापित करने का है जो राज अद्भुत होगा। इसका विश्वास, इसकी भावना, इसकी सोच, इसका निर्णय ने इस तरह से उसकी प्रार्थना को बदल दिया। और तब कह रहा है जब तू अपने राज में आए, वो जान गया कि प्रभु यीशु मसीह का राज अनंत का राज है। वो जान गया प्रभु यीशु मसीह का राज पवित्रता का राज है। वो राज जान गया प्रभु यीशु मसीह का राज इस पृथ्वी का नहीं है लेकिन वो स्वर्ग का राज है। और मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसने उनको, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने उस अनंत राज में प्रवेश कराने का अधिकार दिया है। और ये उसका कह रहा है कि जब तू अपने राज में आए, एक जीवन में विश्वास है, दूसरे जीवन में अविश्वास है। जो एक डाकू के अंदर विश्वास है, दूसरे के अंदर अविश्वास है। एक दोष लगा रहा है, दूसरा क्षमा मांग रहा है। एक यीशु की प्रभुता को तिरस्कार रहा है, दूसरा यीशु की प्रभुता को स्वीकार रहा है। एक दंड के लिए तैयार है, दूसरा दया के लिए तैयार है। ये भिन्नता है मेरे प्रियो। परिणाम क्या हुआ? परिणाम, कुछ समय पहले वो यीशु का शत्रु था, लेकिन अब ये क्या हो गया? अब वो यीशु का मित्र बन गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वो उसका मित्र बन गया। कुछ समय पहले वो ठुकराया हुआ था, लेकिन आज वो स्वर्गदूतों के साथ सहभागी हो गया। कुछ समय पहले वो एक अपराधी था, अब वो स्वर्ग के राज का वारिस बन गया। और मेरे प्रियो, ये प्रतिक्रिया होती है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कार्य पर विश्वास करता है। ये प्रतिक्रिया होती है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, कब तक आप यीशु को ठुकराते रहेंगे? कब तक आप यीशु की निंदा करते रहेंगे? कब तक आप यीशु से दूर भागते रहेंगे? कब तक आप यीशु का अपमान करेंगे? कब तक आप यीशु का तिरस्कार करेंगे? एक व्यक्ति है जो यीशु का तिरस्कार कर रहा है। लेकिन अगर आपको उत्तम परिणाम चाहिए, अगर आपको उत्तम आशीष चाहिए, अगर आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, वो जीवन जो मृत्यु के बाद भी है, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आपको क्रूस पर बलिदान किया है, वो कार्य पूरा कर चुका है। ये तो उस समय हो रहा था जिसको देखकर बोल रहे थे, अब तो 2000 साल से ज़्यादा हो गए, प्रभु का धन्यवाद हो हमने उस कार्य को देख लिया और आज हमारे पास गवाही है, बहुत कुछ है। कब तक आप यीशु साथ आ सकेंगे? यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो सचमुच में आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करेंगे। आपका भी फल और आपके जीवन का परिणाम इसी दूसरे डाकू के समान होगा जिसने कहा कि हम तो अपने करने का फल भोग रहे हैं, इसने तो कोई पाप नहीं किया, ये तो निर्दोष है। यदि यीशु को आप निर्दोष जानते हैं तो आपके लिए अवसर है कि आप यीशु को स्वीकार करें, उसको मत तिरस्कारें, उसको मत ठुकराएं, उसकी निंदा मत करें, उसका अपमान मत करें, लेकिन आप यीशु के पास आए और तब सच में मेरे प्रियो आप उस जीवन को प्राप्त करेंगे जिस जीवन को देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, हमारा धन हमें शांति नहीं दे सकता, हमारा ज्ञान हमें शांति नहीं दे सकता, हमारे मकान और ये सब कुछ संसारिकता हमें शांति नहीं दे सकती। यद्यपि संसार में रहते हुए कुछ इसकी आवश्यकता है जरूर, लेकिन हम इसके कारण सब कुछ प्राप्त नहीं करते। सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना, उसके क्षमा को स्वीकार करना, उस अपने अपराधों को मान लेना और तब उसके बाद ये हमारे जीवन में होता है। इस व्यक्ति ने जो दूसरा डाकू था, यीशु को उसने पहचाना, यीशु पर विश्वास किया, यीशु से पाप क्षमा को प्राप्त किया। क्या आप यीशु को आज पहचानते हैं? किस प्रकार से आप यीशु को जान रहे हैं? अन्य लोगों के समान, अन्य गुरुओं के समान, अन्य और दूसरे देवी देवताओं के समान, अन्य के समान? मेरे प्रिय नहीं, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये सच है। जब यदि आप उस पर विश्वास करेंगे आप प्रभु यीशु मसीह में आनंद पाएंगे। इसीलिए ने कहा, इसी हाथों को उसने फैलाते हुए कहा हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आशन दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। अगर आपको जीवन चाहिए, यदि आपको भरपूरी चाहिए, यदि आपको शांति चाहिए, यदि आपको प्रभु के में अनंत जीवन चाहिए, तो आप निश्चय प्रभु के पास आए। तीसरी वाणी, यूहन्ना उसका 19 अध्याय 26-27 पद। तो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था पास खड़े हुए देखा, तो अपनी माता से कहा हे नारी देख तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, देख तेरी माता। और उस समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है, विशेष वाणी है। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी की सेवा में कभी भी मरियम को कभी भी मां कहकर नहीं पुकारा। लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर से इस नारी को चुना है, और इस नारी को चुन करके परमेश्वर ने अपने उस वचन को जो उत्पत्ति उसके 3:15 में कहा था कि इस स्त्री के वंश से, उसको पूरा करने के लिए इस नारी को चुन करके मेरे लिए उपयोग किया है, इसके गर्भ को उपयोग किया है, पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई और पुत्र जनी है, और वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। सो स्त्री का उपयोग तो किया है, लेकिन स्त्री को उसने प्रभु और परमेश्वर और ईश्वर नहीं बनाया। इस बात को ध्यान रखना है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका सम्मान किया है, उससे प्रेम दिखाया है, उसका आदर किया है, लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूजा नहीं है, उसकी उपासना नहीं की है, उसके सामने सर को नहीं झुकाया। आप देखें जब पहले आश्यकम को यौना में हम देखते हैं, तो जब मरियम आती है, कहती है इनके पास दाखरस खत्म हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी मेरा समय अभी नहीं आया। शुरू से हम बार बार देखते हैं इस तरह से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेरे और आपके लिए एक शिक्षा दे रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन में सिखाया था, तू अपने माता पिता का आदर करना। और बाइबल में, नए नियम में भी हम बार बार देखते हैं, यहाँ तक यीशु मसीह ने इस बात को कहा, शिक्षा दी। यीशु मसीह ने मरकुश के 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को शिक्षा दी, जो कुछ भी उससे शिक्षा दी है, यदि उसने क्षमा की शिक्षा दी तो उसने क्षमा के आदर्श को दर्शाया है, यदि उसने माता पिता का सम्मान करने की शिक्षा दी तो उसने इसको भी यहां पर भी सामने रखा है। वो स्पष्ट रूप से किस प्रकार से, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो बहुत जगह, जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे और मंदिर में थे, और लोग आके बोलते हैं तेरे माता पिता तुझे खोज रहे हैं, उसने कहा मेरे माता पिता वो हैं जो मेरे भेजने वाले की इच्छा का पालन करते हैं, और इस तरह के उत्तर दिया। लेकिन उसने अपने प्रेम को, अपने सम्मान को, अपने सब कुछ को उसने दिखाया। उसके संबोधन में सम्मान है, उसके कर्तव्य का पालन है, और उसकी व्यवस्था का पूरा करना है। कर्तव्य का पालन क्या है? उसने जाने से पहले उस स्त्री को, उस नारी को एक व्यक्ति के हाथ में कर दिया। वो व्यक्ति कौन? जो यौन्ना है, और यौन्ना प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य था। यद्यपि 3 शिष्य उसके साथ साथ अधिकतर रहे, यौन्ना, याकूब और पतरस, उनको इनर सर्कल में प्रभु यीशु मसीह साथ रहे, फिर भी यौन्ना पर वो सबसे ज्यादा भरोसा रखता था, और यौन्ना से सबसे ज्यादा वो प्रेम करता था। और हम देखते हैं किस रीति से उसने उस यौन्ना को जिम्मेदारी दी, और यौन्ना इन सारे शिष्यों से सबसे ज्यादा जीवन भी उसका रहा, सबसे लंबी आयु भी उसमें भोरा। सबसे पहले याकूब को प्रेतकाम उसके 12 अध्याय में प्रभु के लिए वो शहीद हुआ, तब उसके बाद आगे चलकर देते पतरस, उसके बाद वो भी प्रभु के लिए शहीद हुआ, उसको उल्टा क्रूस की तरह उल्टा करके उसको मार डाला गया। लेकिन सबसे बाद में करीब 95-98 साल की आयु में यूहन्ना इस संसार से उसकी मृत्यु हुई, लेकिन वो उस समय तक उसने बहुत कष्ट उठाया, उसको खौलते तेल में खड़ा कर दिया गया, लेकिन उसने प्रभु के लिए इनकार नहीं करा। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जानता था, बहुत सारी बातें प्रभु ने अपने वचन में उसके बारे में कही हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम खास बात को देखते हैं, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपनी माता का सम्मान किया, और व्यवस्था का पालन किया, वचन का पालन किया, और इसलिए उसने इस वाणी का, क्योंकि वो जानता था मेरे बाद किसी और को उसको देखना होगा और संभालना होगा। तब उसके बाद चौथी वाणी को हम देखते हैं, जो हम मरकुश उसके 15 अध्याय में देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर। अब चौथी वाणी में वो परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करता है, पहली वाणी में पिता है, अब यहां पर वो क्या कह रहा है चौथी वाणी में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकुश 15:33-35 पद के अंदर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर परमेश्वर को पुकार रहा है, परमेश्वर परमेश्वर, क्यों इस बात को कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, आदि से लेकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकता ने सृष्टि की है, रचना की है। और मेरे प्रियो ये हम इस बात को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक रहस्य की प्रार्थना है, एक बहुत बेहतरीन, क्यों ऐसा कह रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कारण क्या था। ये ध्यान दीजिए, परमेश्वर परमेश्वर के को पुकारते हुए कह रहा है, अर्थात पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को त्याग दिया। क्यों पिता ने अपनी पीठ को अपने पुत्र से फेर लिया है, क्यों पुत्र को इसका कारण मालूम नहीं था, इसीलिए वो प्रश्न कर रहा है, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया, कारण नहीं मालूम था। क्यों निर्दोष के लहू को पापों की क्षमा के लिए बहाना पड़ा, ये तीन प्रश्न जो उसके इसके अंदर छिपे पाए जाते हैं। क्या पुत्र को नहीं मालूम था, पुत्र सब कुछ ज्ञान रखता है, अनंत ज्ञानी है, सब कुछ ज्ञान रखता है, लेकिन सर्व ज्ञान होते हुए भी इस थोड़े समय में, थोड़े समय के लिए वो पूरा मनुष्य है, और पूर्ण मनुष्य होने के नाते वो क्या हो रहा है, ये न्याय संबंधित अलगाव था, ये वो संबंध आत्मक अलगाव नहीं है, पिता पुत्र का जो संबंध है उसका अलगाव नहीं है, ये अलगाव जो है वो न्याय संगत है, क्योंकि एक न्याय होना है और न्याय को पूरा होना है, वो न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आना है, क्यों, मेरे और आपके पाप के कारण। तो ये जो अलगाव है वो न्याय संगत अलगाव है, कुछ समय के लिए अपने सर्वोपस्थित अधिकार से वो अनुपस्थित है, जो उसका सर्वोपस्थित अधिकार है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वरूपस्थित है, कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो उससे अनुपस्थित है। दूसरा, अगर हम यूहन्ना उसके 11:15 में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे ही मिलेगा। दूसरा, कुछ समय के लिए वो सर्व सामर्थ्य अधिकार से वो अनुपस्थित है, अर्थात सर्व सामर्थ्य अधिकार से वो इस समय वंचित दिखाई दे रहा है। परमेश्वर कुछ समय के लिए अपने आप को अलग करके उसको ऐसा कर दिया कि जो उसका सर्व अधिकार है, सर्व सामर्थ्य अधिकार है, सर्व ज्ञान अधिकार, उससे वो अनुपस्थित है, उसका जो सर्व ज्ञान है। कारण क्या है, कारण मैं और आप है, कारण मानव सृष्टि है, कारण अधम की वाटिका का पाप है, वदन की वाटिका में जो एक मनुष्य पाप आया और एक मनुष्य पाप पूरे पृथ्वी पर, पूरे सभ्य मानव पर फैल गया, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, पाप की मजदूरी से मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उस एक आदम, पहला आदम पाप को लाया, लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह अब जीवन को ला रहा है। क्यों, इस जीवन को लाने से पहले अवश्य था ये दूसरा आदम उस मृत्यु को चख ले जो मृत्यु पाप के कारण आई थी, और उस मृत्यु में से होकर हो जाए, और मृत्यु में से होकर के परमेश्वर पिता की योजना को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, और प्राय लहू के द्वारा सारी वस्तुएं शुद्ध की जाती हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। न ये केवल था, लेकिन परमेश्वर का जो वचन भविष्यवाणी के रूप में भजन संहिता 22:1-22:28 जो लिखा हुआ है वो पूरा होते देखते हैं। दाऊद ने 1000 साल पहले इस वेदना में हो करके इस बात को लिख दिया था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और हम उसको यहां पर पूरा होते देखते हैं। कुछ समय के लिए ये परमेश्वर जो जगत का मेमना है, या परमेश्वर का जो मेमना है, जगत के पाप को उठा ले जाता है, वो पाप से अनजान है, वो पाप बन जाता है, अतः परमेश्वर ने उसे कुछ समय के लिए त्याग करके उसके ऊपर वो सारे पाप का बोझ लाद दिया। ध्यान होना चाहिए, जब आरंभ में जब याजक महायाजक के पास लोग अपने बलिदान को ले आते थे, तो जब वो मेमने को ले आते थे तो लोग क्या करते थे, जो पापी जो व्यक्ति होता था जिसके पाप की छुड़ौती के लिए उस मेमने को बलिदान होता, वो उस पर हाथ रखते थे, उस मेमने पर, और हाथ रख करके तब तो वो मेमना बलिदान किया जाता था। ये प्रतीक होता था कि मेरे सारे पाप जो हैं इस मेमने ने ले लिए, और अब ये मेमना मेरी जगह पर मेरे पाप के लिए बलिदान हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से मेरे और आपके सारे पाप प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए थे। वो तो निष्पाप था, पाप से अनजान था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन बार बार कहता, लेकिन फिर भी इस समय क्रूस पर वो मेरे और आपके सारे पाप को लेकर आए, और इसलिए थोड़ी समय के लिए, क्योंकि पाप की और पवित्रता की परमेश्वर की और पाप का कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए अवश्य जब वो मेमना बलिदान हो रहा है, मेमने के ऊपर पूरी रीति से बलिदान होते जा रहे हैं, मेमने के ऊपर पूरी रीति से पाप लादे जा रहे हैं, याजक उसको बलिदान कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर की अनुमति से यीशु मसीह न केवल मेमना है लेकिन महायाजक भी है, अब वो बलिदान हो रहा है और उस रीति से उस बलिदान की क्रिया को पूरा कर रहा है। और ये इसीलिए अवश्य था कि कुछ समय के लिए परमेश्वर अपने आप को उससे अलग करे, लेकिन जैसे पूरा हो जाता है वो फिर बाद में दूसरी तरह से बातचीत करता है। अब क्या कह रहा है, जल्दी से हम पांच वाणी को देखेंगे। अब वो कहता है मैं प्यासा हूं। क्यों प्यासा है, बहुत कुछ इस पर विचार किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो कलीसिया का प्यासा था, कुछ लोग कहते हैं वो आत्माओं का प्यासा था, कुछ लोग कहते हैं इसका प्यासा था उसका प्यासा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि सच में वो मेरे और आपके लिए मनुष्य बन करके इस समय क्रूस पर है। पृथ्वी पर रहते हुए तो उसने दूसरों का जीवन का जल मैं हूं, मेरे पास आओ, जो जल में से पिएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा, उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मरियम जो कुएं के पास आई थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जल तू पिएगी, 12 इस तरह से नहीं, यहाँ तक कि यौना उसके 7वें अध्याय में जब लोग फसह के पर्व मना रहे थे तो फसह के पर्व से पहले वो क्या करते थे, मंदिर के ओसारा, ओसारा बोलते हैं जो मंदिर का आंगन होता है, इज़ेकेल का दर्शन था कि उन्होंने जल की धारा को बढ़ते और बढ़ते बढ़ते देखा है। उसके अनुसार वहां से एक और प्रथा शुरू थी कि अब पर्व से पहले लोग आते थे और ओसारे में पानी लेते थे और पानी उंडेलते थे और पानी बह करके सीधा जा करके आगे नदी में जाता था, और वो इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर जीवन का जल देने वाला है। लेकिन वो एक तरह से उन्होंने एक विधि बना दी थी, अब नहीं है, अब खत्म हो गया, जब मंदिर खत्म हुआ वो खत्म हो गया, लेकिन उस समय ऐसा। और तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर कहते हैं यूहन्ना के 7 अध्याय में, जीवन का जल मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा और मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना। आज वही जीवन का जल देने वाला कह रहा है मैं प्यास हूं। ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये इस चीज को दर्शा रहा है कि वो पूर्ण मनुष्य है, वो मेरे और आपके समान थकित हुआ, वो मेरे और आपके समान रोया, वो मेरे और आपके समान प्यासा हुआ, वो मेरे और आपके सामने वो मनुष्य पूर्ण मनुष्य होकर उसने मेरे और आपके लिए उस वेदना को, उस पीड़ा को, उस मृत्यु को, उस क्लेश को और उसको सह लिया और मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। क्यों, क्योंकि वो निष्पाप, कोई और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की जगह उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि केवल इस पृथ्वी पर, संसार में, पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं गया जिससे हम उद्धार पा सके, केवल यीशु मसीह, क्योंकि वो निष्पाप था और कोई उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बलिदान नहीं हो सकता था। इसलिए उस बलिदान कार्यक्रम ये इस बात का प्रतीक है कि वो पूर्ण मनुष्य है और पूर्ण मनुष्य होकर के उसने मेरे और आपके लिए पूरी रीति चुका दिया। उसको सिरका चुसाया गया, ये पहले हम भजन संहिता उसके 69:21 में देखते हैं जो भविष्यवाणी की गई। तब आगे चल करके 6वीं, अब वो कहता पूरा हुआ, यहां पर वो कार्य पूरा कर दिया। मैं इसीलिए बोला था मैंने इस दिन के 12 बजे ये क्रूस की वाणी उसके मुख से निकली थी और उसी के बाद अंधेरा छा गया। तब उसके बाद उसने कहा मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब ये हुआ उसने कहा कि सब कुछ पूरा, क्या पूरा हो गया, बहुत सारी बातों पर हम विचार कर सकते हैं। हम देखते हैं जब गसमनी की बाग में प्रार्थना करता तो उसने कहा था हे पिता जो तूने मुझे काम दिया था उसको पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। ठीक है, वो जान रहा था, लेकिन तीन मुख्य बातों को देखिए जहां पर पूरा शब्द की बात आती है। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की थी तो उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के पहले दूसरे पद में प्रभु ने सारा काम जब पूरा हुआ तो उसने कहा पूरा हुआ। संसार की सृष्टि करके 7वें दिन तो करके उसने कहा, अर्थात एक काम जो था वो उसने पूरा किया। जब हम यहां पर आते हैं तो यहां पर देखते हैं अब कौन सा कार्य पूरा किया, यहां पर उद्धार के कार्य को उसने पूरा किया। परमेश्वर के लिए जो बचाव का काम था, छुटकारे काम था, उसने पूरा किया। तब आखिर में चल करके हम प्रकाश वाक्य में देखते हैं, दो स्थल हम पाते हैं जहां 10 अध्याय के 7 पद, 16 अध्याय के 17 पद में, जहां पर हम देखते हैं कि प्रकाश वाक्य में कि समस्त कार्य को पूरा होते हुए देखते हैं। वह कहता है समस्त कार्य, उसी के बाद 17 अध्याय के आगे जैसे हम चलते हैं तब हम देखते हैं किस प्रकार से 19, 20, 21, 22 अध्याय में नए यरूशलेम को देखते हैं, नई शहरपना को देखते हैं, सब कुछ को नया देखते हैं, तब नई सृष्टि को देखते हैं। अर्थात वो काम उस उद्धार कार्य के साथ ये पृथ्वी जब अब नाश होने के समय में आएगी, जब सब कुछ नाश हो जाएगा और परमेश्वर एक नई सृष्टि करेगा, तो उसके लिए उसको देख कहता है पूरा हुआ। तो तीन स्थल ऐसे हैं, सृष्टि के समय में पूरा हुआ, उद्धार के कार्य के समय में पूरा हुआ, और फिर संसार में जो कुछ है वो सब कुछ पूरा हुआ। अब उसके बाद सब कुछ आगे चल करके हम नए देखेंगे जिसको परमेश्वर अपने राज में स्थापित करता है। ना केवल ये, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी, जो छुटकारा की योजना थी, जिसके द्वारा हम बिना उसके द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते, परमेश्वर के वचन की लिखी हुई सारी बातें पूरी, जो भविष्यवाणी, जैसे मैंने कहा करीब 24 घंटे में 29 भविष्यवाणी पूरी हुई है, 24 घंटे के अंदर 29 भविष्यवाणी पूरी है। पहली भविष्यवाणी जो भजन संहिता 41:9 में है, अंतिम भविष्यवाणी यशायाह 53:9 में है। 24 घंटे के अंदर वो वचन में जो लिखी बातें थी, जो कुछ भी हो रहा है अचानक नहीं हो रहा है, पूर्वकालीन योजना है। परमेश्वर ने सृष्टि से पहले एक पूर्वकालीन बहुत बड़ी योजना बनाई थी। किसी ने कहा परमेश्वर सृष्टि से पहले क्या कर रहा था, तो मैं उत्तर देता हूं, सृष्टि से पहले परमेश्वर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था। वो आर्किटेक्ट है, बैठ करके वो सोचा था, ठीक है मैं संसार की सृष्टि करूंगा, उसके बाद ऐसा होगा, लेकिन फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। उसने बहुत बड़ी योजना बनाई थी और उस योजना को समय के अनुसार उसने पूरा किया है, समय के अनुसार। और अंतिम बात, परमेश्वर के लिए बलिदान का कार्य पूरा हुआ। अब किसी बलिदान की जरूरत नहीं है, अब किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति 22 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जा तू अपने बेटे को बलिदान कर, और वो ले जाता है वो बेटे को बलिदान करने के लिए। बेटा पूछता है उससे, पिता आग हमारे पास है, लकड़ी हमारे पास है, लेकिन बलिदान करने के लिए मेमना तो नहीं है, बछड़ा तो नहीं है, मेमना तो नहीं, कहाँ बलिदान करेंगे? अब्राहम कहता है बेटे से, इजाक से, कि परमेश्वर इसका उपाय करे। और वहां पर परमेश्वर उपाय करता है, जैसे ही वो उसको बलिदान करता है, परमेश्वर अब्राहम को रोक लेता है, इजाक को बलिदान नहीं होने देता। अगर इजाक बलिदान हो जाता तो यीशु के बलिदान की जरूरत, और इसलिए इजाक बलिदान नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने वहां रोका और परमेश्वर ने उपाय करा। अब ये उपाय हम जैसे नए नियम में आते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में उसके पहले अध्याय में उसके 29 पद में, जैसे ही यूहन्ना भविष्य देखने वाला प्रभु यीशु मसीह को आते देखता है, कहता देखो ये परमेश्वर का मेमना, ये है वो उपाय जो परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, प्रभु यीशु मसीह पाया है, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले आता है। 35 पद में फिर से उसको रिपीट करता है, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह, उसने वो बलिदान का उपाय पूरा किया और वो मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया। और ना केवल उपाय पूरा किया, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो गया? इब्रानियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद, यहां पर इब्रानियों का लेखक बहुत सुंदर बात करता है। ये आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर, ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचती है। पर्दे के भीतर, ये आशा ने हमें पर्दे के भीतर तक पहुंचा दिया प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा। इसीलिए जैसे उसकी मृत्यु हुई, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा, नीचे से ऊपर नहीं फटा, नीचे से ऊपर फटने का मतलब यह है नीचे से कोई पकड़ के फाड़ सकता था। 150 फीट हाइट होती थी, और 150 फीट जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के प्राण निकले, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। क्या मतलब है? उस मंदिर के पर्दे के अंदर कोई नहीं जा सकता था, साल में एक बार केवल महायज्ञ जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह वो महायज्ञ होकर उसने प्रवेश किया, और उसने मेरे और आपको भी उसमें प्रवेश करने के लिए अधिकार दे दिया। अब मैं और आप यीशु मसीह में होकर उस महापवित्र स्थान में, जो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये हुआ उस बलिदान के द्वारा, न केवल इतना, लेकिन कहता हम भीतर तक पहुंचते हैं, जहां यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बन करके मिल्की सिद्धि की रीति से सदा के लिए महाजक होकर प्रवेश किया, और उसमें होकर के अब वो रुकावट हट गई, वो रुकावट ढल गई। अब हम उसमें होकर उसके पास जा सकते हैं, उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं, उसकी आशा में जीवन को व्यतीत करते हैं, वो आशा जो अनंत की आशा है, जिस आशा में होकर हम इस संसार में जी रहे हैं। और तब उसके बाद अंतिम वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पहली वाणी में हे पिता, अंतिम वाणी में हे पिता, क्या मतलब है? जैसी वो छुटकारे के बलिदान का कार्य पूरा हो गया, पिता का संबंध फिर होना स्थापित हो गया। अब कोई रुकावट नहीं, अब वो पिता में से निकल कर आया और अब पिता में हो गया। और इसीलिए क्या नाम से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में थे, उसने बार बार कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, मैं और पिता एक है, पिता ने मुझे इसलिए भेजा ताकि मैं उसको प्रकट करूं। बार बार यूहन्ना का सुसमाचार का लेखक इस बात को बताता है कि पुत्र और पिता एक है। सो मेरे प्रिय, ये वाणियां बहुत महत्वपूर्ण वाणियां ये मेरे और आपके जीवन के लिए, ताकि मेरे और आपके जीवन में सच में हम इस बात पर विचार कर सके। वो क्रूस पे दी गई वाणी एक बहुत महत्वपूर्ण वाणी। प्रश्न यह है, क्या सच में आप उस मंदिर के पर्दे के अंदर प्रवेश कर चुके? अगर नहीं, इस मंदिर पे प्रवेश करने मतलब है अपने आप को संसार से अलग कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे और आपको परमेश्वर के साथ, पिता के साथ संबंध स्थापित करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है, और यही एक विश्वास समाज का आनंद है। लेकिन मेरे प्रियो, अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसने उस प्रेम में होकर मेरे और आपके लिए बलिदान किया। केवल गुड फ्राइडे को याद करना काफी नहीं है। मेरे और आपके लिए क्रिसमस रोज है, गुड फ्राइडे रोज है, ईस्टर रोज है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म रोज मेरे और आपके लिए नया होना है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान प्रतिदिन मेरे और आपके लिए नया होना है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रतिदिन मेरे और आपके लिए नया होना है। और तब हम उसमें एक आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं।